नमः सिद्धेभ्य नमो अर्हन्ताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो वज्जायाण नमो लोय सव साहूणम् ईसु पञ्चणमो यारो सव पावपणासण मंगलाण च सवेसि पढ़मं हवै मंगलं चत्तारि मंगलं अरहंत मंगलं सिद्ध मंगलं साहु मंगलं केवलिपन्नतो धम्मो मंगलं चत्तारि लोगुत्तमा अरहंत लोगुत्तमा सिद्ध लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहंत शरणं पव्वज्जामि सिद्ध शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवलिपन्नतो धम्मो शरणं पव्वज्जामि क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः काल खिली न खिली मलयाचल की शुचि शीतल वायु सुगंध समेत मिली न मिली कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली भजले अरिहंत अरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली मंगल मंत्र नमुकार 1-1 पद की जितनी गहराइयों में जाएं उतना ही अमृत रस प्रकट होता चला जाता है। पूर्व सत्र में कुछ बातें आई थी, उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। विघ्नों को उत्पन्न करने वाले कर्म, अशुभ कर्म, पाप कर्म, पूर्वबद्ध अपने ही कर्म जिनेंद्र भगवान के नमस्कार से नष्ट होते हैं। और यदि अर्थ समझ करके नमस्कार करें तो गुण श्रेणी निर्जरा भी होती है। फिर उदाहरण दिया एक औषध का कि यदि औषध किसी को लाभ न भी पहुंचाए तो भी वह अनौषध नहीं हो जाती, औषध ही रहती है। उसकी व्याधि असाध्य होने के कारण किसी औषध विशेष ने लाभ नहीं पहुंचाया तो या तो उसकी मात्रा में परिवर्तन किया जाए या फिर औषध को बदला जाए, तब उसकी व्याधि में जिस औषध के लिए वह व्याधि साध्य हो उस औषध का प्रयोग किया जाए तब वो व्याधि दूर हो सकती है। लेकिन एक बात और है, मणि मंत्र तंत्र बहु हुई मरते न बचावे कोई, यदि किसी का मरण काल आ चुका है अर्थात उसकी आयु समाप्ति की ओर है तब मणियां विभिन्न प्रकार के मंत्र यहां तक कि रणमुकार मंत्र से ही बना हुआ एक मृत्युंजय मंत्र भी होता है। आप चाहें तो हम उसको पढ़ के सुना देते हैं। जब आयु के क्षय का काल आता है तब मंत्र तंत्र आदि कोई भी उपाय उस आयु को बढ़ा नहीं सकते। और ये बात बुद्धिगम्य भी है, अपन समझ भी सकते हैं कि जब पेट्रोल ही खत्म हो गया गाड़ी में तो फिर धक्का मार मार करके कितनी बार आप कहां तक ले जाओगे। पर जब तक आयु है तब तक ये सारे जो निमित्त अथवा नौकर्म है ये कार्यकारी होते हैं और बहुत अद्भुत ढंग से कार्यकारी होते हैं। कभी कभी चिकित्सालयों से बड़े बड़े विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा लौटाए हुए रुग्ण मानव रोगी जन इन उपायों से स्वस्थ हो जाते हैं। देखिए णमुकार मंत्र से एक मृत्युंजय मंत्र भी बना हुआ है, उसमें अक्षरों की गणना अधिक है और फिर अंत में कुछ अपनी भावना भी रखी गई है। ओम राम नमो अरिहंताणम, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, ओम रूम नमो आईरियाणम, ओम रौम नमो वज्झायाणम, ओम रह नमो लोए सव्वसाहूणम, मम सर्वग्रहारिष्टम निवारय निवारय, अपमृत्युं घातय घातय सर्वशांतिम कुरु कुरु स्वाहा। स्वाहा वाले मंत्रों में धूपदान में धूप को खेना होता है। तो ये मृत्युंजय मंत्र जो है वो दीप धूप के साथ आराध्य होता है और धूपदान को वाम हस्त की ओर रखा जाता है। धूप को ऐसे बाईं तरफ खेते हैं, दीपक को सम्मुख रखते हैं अथवा दाहिनी ओर भी रख सकते हैं। यदि आप पूर्व मुखी बैठे हैं तो दाहिनी ओर रख सकते हैं, उत्तर मुखी बैठे हैं तो सामने रख लेना। तो ये मृत्युंजय मंत्र है। ओम राम नमो रिहंताणम, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रूम नमो आयर्याणम, ओम ह्रौम नमो विज्ञायणम, ओम ह्रह नमो लोहे सब साहूणम, मम सर्वग्रहारिष्ट निवारय निवारय, अपमृत्युम घातय घातय, सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। सर्वग्रहारिष्टान ऐसा पाठ भी कुछ लोग उच्चारित करते हैं, वास्तव में इसका पाठ सर्वग्रहारिष्टम होगा। तो ऐसे कुछ णमोकार से ही उत्पन्न होने वाले बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं। 84,000 मंत्रों का राजा णमोकार महामंत्र है। तो बात ये चल रही थी कि कभी कर्मों की स्थितियां जो होती है वो बड़ी विचित्र होती है। कभी इतने प्रबल कर्म होते हैं कि ये सारे शांति कर्म कहते हैं इसको। शांति कर्म का अर्थ होता है कि जब आपको संकेत मिले कि कुछ अच्छा समय नहीं चल रहा है, अथवा बार बार कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, तब कुछ जैन शास्त्रों में अनुष्ठान बताए गए हैं, उनको शांति कर्म कहा जाता है। उन सारे अनुष्ठानों के समूह को शांति कर्म कहते हैं। अब वो शांति कर्म क्या है वो भी हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। शांति कर्म के अंतर्गत कौन सी क्रियाएं आती हैं? और अपने पूर्वाचार्य बड़े विवेकी थे, बड़े ज्ञानवान थे और कारण कार्य विधान को भली भांति जानने वाले थे। जैन सिद्धांत के, जैन अध्यात्म के, जैन न्याय के, जैन धर्म के, जैन दर्शन के, इन सभी के मर्मज्ञ थे। क्योंकि एक विधा का ज्ञान होने पर दूसरी विधा में त्रुटि हो सकती है, लेकिन अपने पूर्वाचार्य सर्व विधाओं में निष्णात थे, निपुण थे। तो वो श्लोक हम आपको बता रहे हैं जिसमें बताया है कि जब कभी ऐसे कोई संकेत आपको मिले, कोई बुरे सपने आ जाएं या फिर कोई और ऐसे संकेत आपको प्राप्त हों कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, तब ये शांति कर्म किए जाते हैं। और इन शांति कर्मों से अनेक प्रकार के अनिष्ट, अनेक प्रकार के अशुभ कर्म शांत हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद अवश्य है कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो पत्थर की लकीर के समान होते हैं, जिनको निदत्त निकाचित श्रेणी का कर्म बताया गया है और जिनमें बहुलता ऐसे कर्मों की है कि जो आपने देव शास्त्र, गुरु और धर्मायतनों का अनादर करके बांधे हुए कर्म हैं। ऐसे कर्म आपने जो बांध रखे हैं वो जब उदय में आते हैं तो फिर बड़ी कठिनाई हो जाती है। फिर अपन शांति कर्म भी करते रहें, शांति कर्म करने में कोई बुराई तो नहीं है, पर उन कर्मों का फल टलना बहुत मुश्किल होता है। वो कर्म जैसे श्रीपाल ने कितना सब कुछ किया पर वो कुष्ठ व्याधि वर्षों तक बनी रही। अंततः सिद्ध चक्र विधान की आराधना, 8 वर्ष सिद्ध चक्र की आराधना हुई और फिर मैना सुंदरी का भी पुण्य था और प्रभाव भी था, भक्ति भी थी और पवित्रता भी थी। सब संयोग ऐसे बन गए कि अंततः वो व्याधि दूर हो गई। देखो एक बात है, सीता जी ने भी शांति कर्म किया था। देखो हम वही श्लोक निकाल के दे रहे हैं आपको। पद्म पुराण भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ है, जो उसके तीसरे भाग में एक बहुत सुंदर प्रश्न है और उसका समाधान अपने को इसी में मिल जाएगा। देखिएगा, ये है सीता जी की दाहिनी आंख अंदर से फड़क रही थी, तो पुरुषों के लिए तो दाहिनी आंख का फड़कना शुभ है, लेकिन माता बहनों के लिए दाहिनी आंख का अंदर से फड़कना अनिष्ट संकेत देता है। तो सीता जी ने अपनी सखियों से कहा एक ऐसा दिन आया जब सीता जी गर्भ धारण की हुई थी और गर्भ काल लगभग 8 माह व्यतीत हो चुके थे अथवा 8वां माह चल रहा था। उस समय ये घटना हुई कि कुछ प्रजाजन श्री राम से मिलने आए और राम उस समय महेंद्रोदय नामक उद्यान में अवस्थित थे। प्रजा उनसे मिलने गई, वहां आस्थान मंडप था, यानी एक सभागृह जैसा बना हुआ था उस उद्यान में, बगीचे में। तो यह समाचार सीता जी के पास पहुंचा कि श्री राम से प्रजा मिलने पहुंची हुई है, राजा राम के पास प्रजा पहुंची है। तो ज्यों ही सीता जी ने यह समाचार सुना, उनकी दाहिनी आंख फड़कने लगी। और फिर उन्होंने, सीता जी ने विचार किया, ये पूरे पद्म पुराण में, पद्मचरितम में सीता जी को शकुन शास्त्र के विषय में विदुषी बताया गया है। जहां भी कोई शकुन देखती है सीता जी, तो तत्काल उसके परिणाम का विचार करने में वो सक्षम रहती है। तो अब क्या हुआ कि दाहिनी आंख जो थी वो फड़कने लगी। सीता जी ने विचार किया, अचिंतयंच किन नियतत निवेदयति मे परम दुःखस्यागमनम् नेत्र मदस्तात् स्पंदनम् भजत। दाहिनी आंख के नीचे की ओर फड़कन थी, तो सीता जी ने मन में विचार किया कि दाहिनी आंख के नीचे की ओर भीतर में ये जो फड़कन आ रही है, स्पंदन हो रहा है, ये किस दुख के, किस भयानक दुख के आगमन की सूचना दे रहा है? सीता जी ने मन में विचार किया, क्योंकि शकुन शास्त्र में यही था कि अगर दाहिनी आंख किसी नारी की फड़कने लग जाए और नीचे के भाग में फड़के तब भयानक संकट की स्थिति रहती है। पापेन विधिना दुखम प्रापिता सागरांतरे दुष्टस्तेन संतुष्ट किम अन्यत प्रापयिष्यति। मेरे पापी कर्म ने मुझे समुद्र के उस पार पहुंचाकर पीड़ित कर लिया, लेकिन वो अब भी संतुष्ट नहीं हुआ। अब मुझे और कौन सा दुख प्राप्त कराना चाहता है? निर्मितानां स्वयं शश्वत कर्मणाम उचितम फलम ध्रुवम प्राणि भी राप्तव्यम न तच्छक्य निवारण। स्वयं निर्मित किए हुए कर्मों का योग्य फल प्राणियों द्वारा नियम से प्राप्त करने योग्य होता है और उसका निवारण कर सकना संभव नहीं होता। सीता जी विचार कर रही, और कर्म का बंध निरंतर हो रहा है। बेहोशी में कर्म बांधता है संसारी प्राणी और भुगतते समय होश ठिकाने आ जाते हैं। सूर्य यद्यपि चंद्रमा का पालन करता है परंतु प्रयत्न पूर्वक अपने तेज से उसे फीका भी कर डालता है। इसलिए कर्म का फल कौन टाल सकता है? व्याकुल होकर सीता ने अपनी सखियों से कहा, अहो देवियों, तुम सबने तो आगम को सुना हुआ है, इसलिए मुझे अच्छी तरह विचार कर बताओ कि मेरे दाहिने नेत्र का अधो भाग क्यों फड़क रहा है? इसका क्या फल है? निश्चय करने में निपुण अनुमति नामक जो देवी थी वह बोली कि हे देवी, ये देवी शब्द जो है ना लोक में महारानी आदि लोगों के लिए भी प्रयुक्त होता है, महादेवी भी बोलते हैं रानियों को, और रानी की सखियां भी उसी उद्बोधन से संबोधित की जाती हैं। तो अनुमति ने कहा, हे देवी, सीता जी से कहा, इस संसार में कर्म नाम का दूसरा कौन सा पदार्थ दिखाई देता है? कोई अलग से विधि नाम की वस्तु नहीं है। पूर्व पर्याय में जो अच्छा या बुरा कार्य हमने स्वयं किया है उसी को कृति, कृतांत, विधि, दैव अथवा ईश्वर आदि कहा जाता है। मैं अलग से रहने वाले किसी कृतांत के द्वारा इस अवस्था को प्राप्त कराई गई हूं, ऐसा विचार करना अज्ञान मूलक है। अर्थात कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे परेशान कर रही है, मेरे कर्म कोई वस्तु नहीं है, वही शक्ति मुझे पीड़ित कर रही है, ऐसा विचारना अज्ञान मूलक है। अपने ही कर्म को विधि अधिक कहा गया है। फिर गुण दोष को जानने वाली गुणमाला बोली, सांत्वना देने लगी और उन्होंने दुखिनी सीता से कहा कि हे देवी, प्राणनाथ को तुम ही सबसे अधिक इष्ट हो और तुम्हारी ही प्रसन्नता से दूसरे लोगों को सुख का योग प्राप्त होता है, इसलिए सावधान चित्त से भी मैं उस पदार्थ को नहीं देख पा रही हूं जो हे सुचेष्टिते तुम्हारे दुख का कारण बन सके। यानी मुझे ऐसी कोई वस्तु नहीं दिखती जिससे तुम्हारे ऊपर कोई संकट उत्पन्न हो सके। इन दो के अतिरिक्त अन्य देवियों ने कहा कि हे देवी, अधिक तर्क वितर्क करने से क्या लाभ है, शांति कर्म करना चाहिए। अब देखिए शांति कर्म क्या है, वो शास्त्र से बता रहे हैं। जिनेंद्र भगवान का अभिषेक, बड़ी बड़ी पूजाएं और किमिच्छक दान के द्वारा अशुभ कर्म को दूर हटाना चाहिए। ऐसा कहने पर सीता ने कहा, हे देवियों, आपने बिल्कुल उचित कहा है, क्योंकि दान, पूजा, अभिषेक और तप अशुभ कर्मों को नष्ट करने वाले हैं। दान विघ्नों का नाश करता है, शत्रुओं के वैर को दूर करता है, पुण्य का उपादान होता है और बड़े भारी यश का कारण बनता है। इतना कहकर सीता ने भद्रकलश नामक कोषाध्यक्ष को बुलवाया और कहा, प्रसूति पर्यंत, अर्थात जब तक मेरे संतान उत्पन्न नहीं हो जाती उस दिन तक प्रतिदिन किमिच्छक दान किया जाए। जो जिस वस्तु की इच्छा करे उसको दान में वही वस्तु दी जाए, इसको किमिच्छक दान कहते हैं। जैसी आज्ञा कहकर कोषाध्यक्ष चला गया और इधर सीता भी जिन पूजा आदि संबंधी शांति कर्म में आदर पूर्वक निमग्न हो गई। अब शांति कर्म में जो जो बातें थी, जो जो क्रियाएं थी, उसमें सीता जी मग्न हो गई। एक कन्नड़ भाषा में जैन रामायण, उससे भी हमने इसी प्रसंग को संग्रहित किया है। देखिए उसमें क्या लिखा है। ये शांति कर्म का जो प्रसंग है ना, उसी को हमने यहां पर संग्रहित किया था। दान, पूजा, अभिषेक और तप अशुभ के नाशक हैं, ऐसा सीता ने कहा। और एवं इस प्रकार, ये पद्म पुराण का ही आगामी श्लोक है, 23वां श्लोक है। अधिकार जो है, पर्व जो है वो 96 है, 96 तीसरे भाग में, और ये श्लोक क्रमांक 16 के बाद 23 वाली है। एवं सुविधना दानम महोत्साह मदीयत विविधन नियमम देवी निज शक्त्या चकारच। वो गर्भावस्था थी तो उसने अपनी शक्ति के अनुसार, सीता माता ने विविधम नियमम चकार, विविध का अर्थ होता नाना प्रकार के, विभिन्न प्रकार के नियम किए। विधि पूर्वक उन्होंने बड़े उत्साह के साथ दान प्रदान किया, किमिच्छक दान। और यहां पर च शब्द से पूर्व कथित श्लोक क्रमांक 16 में उल्लिखित पूजा, नियम और तपह क्रिया भी ग्राह्य है। तप को भी शांति कर्म के अंतर्गत लिया गया है। प्रावर्त्यंत महापूजा
अभिषेकाः सुसंपदः पाप वस्तु निवृत्तात्मा बभूव समधीर जनः। महापूजाएं और सुंदर संपदाओं से युक्त नाना अभिषेक प्रवर्ताए गए अयोध्यावासी जन पाप वस्तुओं से निवृत्त रूप होकर समता बुद्धि हो गए। इति क्रिया प्रसक्तायाम सीतायाम शांत चेतसी आस्थान मंडपे तस्थौ दर्शने शक्रवत बलह। इस प्रकार की क्रियाओं में सीता के आसक्त होने पर जिस दर्शनीय सभा मंडप में सबका चित्त शांत हो जाता था, ऐसे बलभद्र श्री राम इंद्र के समान विराजमान हुए। अब वहां पर वो प्रजा राजा से निवेदन करेगी और लोकापवाद की जो चर्चा है वो श्री राम के समक्ष प्रस्तुत करेगी। यहां ये प्रसंग चल रहा है। और जो कर्नाटक की कन्नड़ भाषा गत रामायण है जिसको पंप रामायण कहा गया है, उसमें देखिए क्या लिखा है। ये चार पंक्तियां कन्नड़ भाषा की है, हमने हिंदी लिपि में उसको लिख लिया था। आगड़ा दुर्नयक के सीते भयस्थे थागि गृह महत्तरणन करे दारीन बेड़ी दोड़ वर्गदम कुडवदेदुम पेड़दु तानु मनुदिनम जिनाभिषेकमुमं जिन पूजे गळुमं माडुत्तु मिरे लोंदु दिवसं जनपद जनम बंधु भिन्नविल सण मंदिरे रामस्वामी निम्म बंद कार्य मनंजगे मनंज दे पेड़ में बंधु प्रजे गण नुमत दिन विजय नेम्ब महत्तर निन्तेदन। ऐसी पंक्ति है कन्नड़ भाषा में, हमने कोशिश की पढ़ने की। उसका अनुवाद हिंदी अनुवाद लखनऊ से प्रकाशित है। तब सीता उस अपशकुन से डर कर पुरोहित को बुलवाकर याचकों को नहीं न कहने का आदेश देकर, कोई भी याचक जो भी बोले उसको नहीं नहीं बोलना ऐसा आदेश देकर प्रतिदिन जिनाभिषेक जिन पूजा कर रही थी। कि एक दिन ग्रामीण लोग राम के पास आए और हाथ जोड़ आने का उद्देश्य निवेदन करने से भयभीत होकर चुपचाप खड़े रहे। इसे देखकर राम ने उन्हें आज्ञा दी कि निसंकोच अपने आने का उद्देश्य बतावे। तब उन ग्रामीणों की अनुमति पाकर विजय नामक मुखिया ने इस प्रकार निवेदन किया। तो ये शांति कर्म कहलाता है। तो शांति कर्म में ये जप तप भी है। तो जिनेंद्र भगवान के नमस्कार आत्मक जो महामंत्र नमोकार है, इस नमोकार से भी विघ्नों की शांति होती है अगर पढ़ते हैं तो। और अगर उसका अर्थ समझकर पढ़ते हैं तो असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है। और अगर उन परमेष्टियों के विषय में विस्तृत ज्ञान प्राप्त करके ध्यान लगाकर नमस्कार करते हैं तब असाध्य कर्मों की भी निर्जरा हो जाती है। वो गुणश्रेणी निर्जरा समझकर कर रहे थे तब हो रही थी, वो अलग है। और विस्तृत जानकारी को प्राप्त करके पांचों परमेश्वरों के विषय में फिर आप ध्यान लगा करके नमस्कार करते हैं तो फिर असाध्य कर्मों को भी यह नमस्कार नष्ट कर डालता है। ये अपन ने स्वाध्याय में पढ़ा था। अब इसके उपरांत एक बड़ी ही अद्भुत बात आचार्य कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखिए, परमेश्वर नमस्कार का पूर्ण फल किनको प्राप्त होता है और अपूर्ण फल किनको प्राप्त होता है, इसका समाधान करते हुए आचार्य वीरसेन स्वामी धवला की 9वीं पुस्तक में प्रथम सूत्र की ही टीका करते हुए लिख रहे हैं। नान जानपौ नमोकारु संपूर्णो, विस्तृत ज्ञान प्राप्त कर लिया पांचों परमेष्ठियों के विषय में और ध्यानात्मक नमस्कार किया आपने। अब ध्यानात्मक नमस्कार आप वो षट कमल विधि से कर लो अथवा वो प्रथम पद का नमस्कार इन 7 स्थानों पर कर लो, 2 आंख 2 कान 2 नासिका और मुख, ये ध्यानात्मक नमस्कार होता है, तब वो संपूर्ण फल प्रदान करता है नमस्कार। जहण्णो जगण्य फल किनको होता है, तुल मंद सद्धणाणु विद्दो बोद्धव्वो, थोड़ी श्रद्धा है, बिल्कुल थोड़ी सी श्रद्धा है, उस मंद श्रद्धान से अनुविद्ध जो नमस्कार किया जाता है वह जघन्य नमस्कार है। उत्कृष्ट नमस्कार ज्ञान ध्यानात्मक नमस्कार है और शेष असंख्य लोक भेय भिन्ना मध्यमा, मध्यम नमस्कार के असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। इस लोक में जितने प्रदेश हैं, प्रदेश आकाश के उस छोटे से हिस्से को कहते हैं जहां एक परमाणु अवस्थित होता है, उतने क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। तो संपूर्ण लोक में 343 रज्जु प्रमाण इस संपूर्ण लोक में असंख्यात प्रदेश हैं और इन असंख्यात प्रदेशों को जब असंख्यात से गुणित करते हैं, गुणकार किसको लेंगे, मल्टीपल किसको लेंगे, जितने असंख्यात प्रदेश हैं लोक में उसी से गुणित करते हैं तो जितने भेद हो जाते हैं उतने मध्यम नमस्कार के भेद हैं। नचते सव्वे समान फला ऐ पसंगादु, आचार्य कहते हैं कि सबके फल समान नहीं हो सकते, नहीं तो अति हो जाएगी। अति का मतलब क्या, कि नमोकार की महिमा में अतिशयोक्ति हो जाएगी, महिमा मंडन में अति हो जाएगी, यानी अतिरेक हो जाएगा, उसमें सत्यता नहीं अवशिष्ट रह पाएगी, असत्य वर्णन हो जाएगा। इसलिए सब प्रकार के जो नमस्कार हैं भिन्न भिन्न फल वाला है वाले हैं, सबवे न समान फला, वे सभी एक जैसे फल नहीं देते, अलग अलग फल देते हैं। आप सोचिए कि जो सुभग गोपाल था, वो जो ग्वाले का बच्चा था, उसको क्या फल दिया नमोकार ने, सेठानी को उसकी मां बना दिया नमोकार मंत्र ने, समझ में आ रही बात, वो सेठानी का पुत्र बन गया। और जीवंदर कुमार ने जिस कुत्ते को नमोकार सुनाया था, जब वो नमोकार मंत्र सुना रहे थे तब वो जिन ब्राह्मणों ने उस कुत्ते को सामग्री दूषित करने के कारण मारपीट दिया था और मरणासन्न बना दिया था, उन्होंने जब देखा कि कोई सुंदर मनुष्य इस कुत्ते को कुछ सहला रहा है, सांत्वना के वचन बोल रहा है, तब उनमें से किसी ने जीवंदर से कहा, मर जाने दो उस दुष्ट को, तुम कहां लगे उसके पीछे,
हमने इतना पीटा है उसको कि उसका दुख तुम दूर नहीं कर पाओगे। बहुत आवेश था उनके अंदर, कषाय बहुत थी। अब जानवर है बेचारा, क्या करे, भूखा प्यासा यहां वहां भटकता है, उसको क्या पता कि ये सामग्री इनके किसी अनुष्ठान की सामग्री है। उसको तो ऐसा लगा कि कोई खाने की चीज है, सूंघने लगा वो और उसने मुंह लगा दिया उसमें, तो उनने पिटाई कर दी बेचारे की, और इतना पीटा कि वो कंठगत प्राण हो गया, माने उसके प्राण गले तक आ गए। जीवंधर ने उनको उत्तर दिया कि कोई किसी के दुखों को कैसे दूर कर सकता है, सब कर्माधीन है, मैं इसका दुख दूर नहीं कर रहा हूं, इसको देखकर जो मुझे दुख हो रहा है उसको दूर कर रहा हूं, और मेरा दुख तभी दूर हो सकता है जब मैं इसको कुछ सांत्वना दूं। तब वो जो थे वो सोचते हैं कि ये कोई धुनी व्यक्ति है, अपनी धुन का पक्का है, इसको जो करना है करने दो, अपना अपना काम करते हैं, अंदर चले गए। और जीवंधर कुमार ने जब देखा कि ये तो ऐसे ऐसे झटके ले रहा है कुत्ता, यानी अब तो इसकी मृत्यु अति निकट है, तब मधुर स्वर में एक अपेक्षा से, जीवंधर कुमार संगीत के बड़े विशारद विद्वान थे, उन्होंने नमोकार मंत्र उसके कानों में दे दिया। कुत्ता मरण को प्राप्त होकर यक्ष देव बन गया, और यक्ष देव बनने पर उसने जीवंधर कुमार के इस उपकार को अंत तक नहीं भुलाया, और जब जब जीवंधर को आवश्यकता पड़ी तब उस यक्ष ने सहायता की। देखिए, जानवरों से भी अपने को कृतज्ञता का पाठ सीखने मिलता है। वो कुत्ता था, नमोकार सुनकर उसको देवगति मिली, जिसने सुनाया उसका उसने स्मरण किया और हमेशा उसको मदद दी। नाग नागिन को पार्श्व कुमार ने वाराणसी में, वाराणसी के बाह्य प्रांगण में जहां पर वो पंचाग्नि तप करने वाले तापस महिपाल थे, जो संबंध की अपेक्षा से क्षत्रिय थे और पार्श्वनाथ भगवान के नाना थे, सगे नाना थे, कमट के जीव, लेकिन ऐसे नाना बन गए थे वो। तो वो जब पंचाग्नि तप कर रहे थे और उस अग्नि में वो जो काष्ट जल रहा था उसमें नाग नागिन थे, तो पार्श्व कुमार ने जाकर के कहा कि ऐसा तप क्यों करते हैं आप, इसमें प्राणियों की हिंसा हो रही है। और फिर उसने अभिमानवश कहा कि कहां हिंसा हो रही है, और मन में विचार किया कि ये कुमार मुझे नमस्कार भी नहीं कर रहा है, मैं संबंध में इसका नाना हूं और इस समय मैं तपस्वी हूं, कितनी कठिन तपस्या कर रहा हूं मैं, पंचाग्नि तप कितना कठिन तप है, चार दिशाओं में अग्नि रखी जाती है, अग्नि कुंड रखे जाते हैं और बीच में बैठा जाता है और ऊपर से सूर्य तपता है, और जब सूर्य नहीं होता तो ऊपर से प्रबंध करके एक अग्नि की कढ़ाई ऊपर रखी जाती है जिसके अंदर अग्नि प्रज्वलित रहती है, तो उसकी आंच सिर पर पड़ती है। इतनी तपस्या करने वाला मैं, मुझे ये प्रणाम भी नहीं करता राजकुमार, और मेरी तपस्या में ये जीव हिंसा बता रहा है। उसने पूछा कहां है जीव, तो कुमार ने कहा कि इस काष्ठ में, तो उस काष्ठ को ऐसे खींच के निकालता है और फिर कुल्हाड़ी से उस काष्ठ को फाड़ता है, तो अंदर जो खोल थी उसमें नाग नागिन का जोड़ा था, और वो नाग नागिन कुछ अध जले से थे और कुल्हाड़ी के वार से भी उनको घाव हो गया था, तो ऐसे 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 फड़फड़ाने लगे वो नाग नागिन, तड़पने लगे। तो तीर्थंकर की करुणा का तो क्या कहना, उनकी करुणा प्रवाहित हो उठी, वो वहीं बैठ गए और उनके पास जाकर के उन्होंने उनको संबोधन दिया, उद्बोधन दिया। उत्तर पुराण में ऐसा लिखा है, पार्श्वनाथ चरितम में लिखा है कि नमोकार दिया। अब उत्तर पुराण में जो उद्बोधन शब्द है, तो उद्बोधन शब्द से अपन ये निर्णय नहीं कर सकते कि उन्होंने नमोकार नहीं दिया था। उद्बोधन में नमोकार नहीं आ सकता क्या? क्यों नहीं आ सकता? तो नाग नागिन जो थे भगवान के सानिध्य में शांत हुए और वो अधोलोक के स्वामी, प्राकृत पाषाणाः चर्य में लिखा है कि वो तीन पल्ल आयु वाले धरणेन्द्र बन गए, नाग धरणेन्द्र बन गया और फिर नागिन पौमावई, प्राकृत भाषा में नाम दिया उनका, पौमावई का अर्थ होता है पद्मावती बन गई। पाषाणाचर्य, पाषाणाचर्य के रचनाकार आचार्य पद्म कीर्ति आचार्य हैं। प्रद्युम्न चरित्र के रचनाकार आचार्य महाकीर्ति है। तो हमारा थोड़ा सा मन भटक रहा था कि कहीं कोई हम नाम में स्खलित ना हो जाए, इसलिए हमने देख करके बता दिया। तो उन्होंने जब नमोकार दिया, उद्बोधन दिया, वो देवगति को प्राप्त हो गए और देवगति में अधोलोक के स्वामी जिसको नागलोक कहते हैं, वहां पर नाग कुमार जाति के देव बने हैं। तो भवनवासी वो, और देव भी ऐसे बने कि वो धरणेन्द्र नाग कुमार जाति के देवों का इंद्र होता है। और ये सामान्य घटना नहीं है और एक उत्प्रेक्षा अवश्य की जा सकती है कि जिनने सुनाया था वो विशेष थे, इसलिए सुनने वालों को विशेष पद प्राप्त हुआ। साधारण व्यक्ति को ही सुनाते तो मुश्किल था। तो पार्श्वनाथ भगवान ने सुनाया और वो धरणेन्द्र पद्मावती बन गए। और तीन पल्ल की आयु यक्ष यक्षियों की नहीं होती, यक्ष यक्षियों की आयु एक पल्ल की होती है, इसलिए तीन पल्ल की आयु वाले वो देव हुए। इसका अर्थ स्पष्ट है कि वो भवनवासी में नाग कुमार जाति के ही देव हुए, क्योंकि भवनवासी में असुर कुमारों की आयु एक सागर की है, नाग कुमारों की तीन पल्ले हैं। फिर सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार आदि जो देव हैं उनमें आधा आधा पल्ले कम आयु है, तो तीन पल्ले आयु केवल नाग कुमारों की है और वो इनको प्राप्त हुई। तो स्पष्ट है कि वो धरणेन्द्र और पद्मावती नाग कुमार देवों के इंद्र और इंद्राणी थे। अब देखिए उनमें भी कृतज्ञता का भाव कितना अद्भुत है कि जब पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर संकट आया तब उनके आसन कंपमान हुए। बोलचाल में अपन कंपायमान कहते हैं, व्याकरण में कंपमान शब्द बनता है, कंपते इति कंपमान है। तो कंपमान हुए उनके आसन, यहां पर नपुंसक लेंगे आसन तो कंप, कंपते इति कंपमानम तेषाम आसनम, तयोर आसनम, उन दोनों के आसन कंपित हुए। कंपित होने पर उन्होंने अपना अवधि ज्ञान लगाया और ये नाग कुमार, नाग कुमारियां इसलिए सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाते हैं क्योंकि इनका नियोग समव शरण में रहता है। समव शरण में जहां भवनवासियों की सभा होती है, नागकुमारों की एक अलग सभा होती है, नागकुमारियों की, भवनवासी और भवनवासिनी, इन देव और देवियों की सभाएं भिन्न होती है। तो वहां पर दसों इंद्रों को और दसों इंद्राणियों को अपना नियोग पूर्ण करना होता है, वहां उनको उपस्थित होना ही पड़ता है, और ये पद अभव्य जीवों को प्राप्त नहीं होता। तो समव शरण में पहुंचकर वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुके थे, इसलिए कभी भी स्वप्न में ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती कि धरणेन्द्र या पद्मावती मिथ्या दृष्टि होते हैं। जन्म काल में अवश्य उनके पास सम्यक तो नहीं होता, लेकिन अंतर मुहूर्त में पर्याप्तक होकर जब वो वहां के नियोग पूर्ण कर लेते हैं, अभिषेक आदि सब संपन्न कर लेते हैं, तब उनको वहां समव शरण में जाना होता है। और समव शरण में जाने वाले कोई भी जीव सभा भूमि के अंदर मिथ्यात्व के साथ नहीं रह सकते, वो नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं। तो उन्होंने अपने उपकार का स्मरण करके जब पार्श्वनाथ स्वामी पर उपसर्ग हुआ, संयोग की बात ऐसी थी कि 7 दिनों तक उपसर्ग चला, लेकिन जब उपसर्ग चरम सीमा पर आ गया तब उनका आसन कंपित हुआ। लोग बोलते हैं कि पहले क्यों नहीं आए, इतनी देर क्यों लगाई आने में, 7 दिन तक तो उपसर्ग चलता रहा। अरे भाई, अपनी बुद्धि से इस आवेश को शांत करो, इसको निकाल दो। कर्मों के योग तीर्थंकरों के जीवन में भी घटित होते हैं, ये स्वीकार करो। इतना प्रबल कर्म का उदय था, उनके ऊपर उपसर्ग चलता रहा 7 दिनों तक। फिर जब उपसर्ग अपनी चरम सीमा पर आ गया तब वहां पर आसन कंपित हुआ, और आसन कंपित होने के बाद उन्होंने कोई विलंब नहीं किया, सब छोड़ छाड़ करके तत्काल वहां उपस्थित हो गए कि हमारे उपकारी पर संकट आया, और उस उपसर्ग का निवारण किया उन्होंने। और उपसर्ग निवारण के उपरांत भगवान को केवल ज्ञान हुआ, कितनी बड़ी बात है। उपसर्ग पर्यंत केवल ज्ञान नहीं हुआ, जब वो उपसर्ग निवारण में तत्पर हुए, काल तो चल ही रहा था उपसर्ग का, क्योंकि कमठ रुका नहीं था। कमठ तो एक पहाड़ तक लेकर आ गया था उन पर डालने के लिए, तो काल तो उपसर्ग काल ही था। इसलिए जब उनको केवल ज्ञान हो गया तो फिर वो उपसर्ग केवली की श्रेणी में आए। लेकिन धरणेन्द्र और पद्मावती ने जो सहयोग दिया, उस सहयोग की गणना नकारी नहीं जा सकती। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने लिखा कि भगवान को केवल ज्ञान जब हुआ तब कई घटनाएं हो रही थी, उनके अंदर के कर्मों में भी कुछ घटनाएं हो रही थी, बाहर भी कुछ घटनाएं हो रही थी, सब कुछ चल रहा था, और फिर उनको केवल ज्ञान हो गया। बहुत बड़ी घटना थी केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान होते ही सारा उपसर्ग शांत हो गया, क्योंकि केवल ज्ञान का एक अतिशय है, उपसर्ग नहीं हो सकता। तो उन्होंने सब कुछ स्वीकार कर लिया आचार्य गुणभद्र स्वामी ने, कि भाई हम सब बात स्वीकार करते हैं कि इनने ऐसा किया, उनने ऐसा किया, अंदर से ऐसा हुआ, भगवान ने ध्यान लगाया, भगवान ने पुरुषार्थ किया, सब बातें हमें स्वीकार हैं। तो बहुत बड़े उपकारी थे वो, भगवान भी उनके उपकारी थे और वो भी उपसर्ग काल में यहां पर आकर उपकारी बन गए, कृतज्ञ हो गए। कृतज्ञता गुण को आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है कि सब गुणों में ये गुण कृच्छ्र लभ्य होता है, अर्थात बहुत कठिनता से मिलता है। आप उपकार करो, कईयों का उपकार करो, उन सब लोगों में जब आपके ऊपर कोई स्थिति ऐसी बनेगी तो आपके उपकार का स्मरण रखने वाले इन्हें गिने ही मिलेंगे। कई कहेंगे कि भाई मेरे पुण्य का उदय आ गया तो फिर ये निमित्त बन गए, अब मैं क्या कर सकता हूं, इनके पाप का उदय चल रहा है, मैं क्या करूं। मैं भावना करता हूं कि ये ठीक रहे, ऐसे कहकर पत्ता काटने वाले लोग भी मिल जाएंगे। अथवा कोई और बहाना कर देंगे, बहुत सारे बहाने हैं दुनिया में। तो यहां पर आचार्य कह रहे हैं कि नमोकार के फल समान नहीं होते। नमोकार अनेक प्रकार का होता है और वो जिस भाव से आपने नमस्कार किया है उस भाव से उसके फल में न्यूनाधिकता आती है। नमोकार का अपना जो निजी प्रभाव है वो तो रहता ही है, लेकिन उसके साथ जब अपने भाव जुड़ जाते हैं तो फिर उसमें प्रभाव में न्यूनाधिकता पाई जाती है। अगर अपने भाव मंद होंगे तो प्रभाव में न्यूनता होगी, अगर अपने भाव उत्कृष्ट होंगे तो प्रभाव उत्कृष्ट होगा। गणधर देव जब नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, गणधर देव जब ध्यानात्मक नमस्कार करेंगे तो सर्वोत्कृष्ट फल है। और इसी तरह और भी जो ऋषि हैं, बड़े बड़े रिद्धिधारी साधु हैं, उनको सर्वोत्कृष्ट फल होगा। बाकी जितने जीव हैं वो सब मध्यम फल वाले हैं, कुछ जघन्य फल वाले भी हैं। मंद श्रद्धानी जो है वो जघन्य फल वाले हैं। तम्मा न पुवुत्त दोषाणवित संभवोत्त सिद्धम। इसलिए जो पहले कहा हुआ दोष था, वे नमोकार मंत्र से कईयों का मंगल नहीं होता, कई लोगों के संकट शांत नहीं होते, तो फिर नमोकार मंत्र को हम मंगल कैसे मान लें। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसा दोष इसमें मत लगाओ, वो असंभव है। ये दोष नमोकार के विषय में संभव नहीं है। उदाहरण दे दिया, अग्नि का उदाहरण भी दिया, औषध का भी उदाहरण दिया। तो अब अपने को ये विचार करना है कि अपन नमोकार मंत्र प्रतिदिन पढ़ते हैं, पढ़ते समय एक बार आज के इस उपदेश का स्मरण कर सकते हैं अपन। धवला में क्या पढ़ा था अपन ने आज, ये था कि नमोकार के फल बदल जाते हैं। नमोकार तो एक ही है लेकिन इसके फल बदल जाते हैं अपने कारण। तो अपन अपने नमोकार का फल घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, इसको अपने को अपने भीतर देखना है और फिर नमोकार की आराधना करनी है। कितना आनंद आएगा, अपन अपनी भूमिका के योग्य जितना उत्कृष्ट कर सके उतना पुरुषार्थ क्यों ना करें। जैसे 10 दिनों में कुछ लोग एक उपवास से शुरू करते हैं, फिर बबढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, फिर जब 8 उपवास हो जाते हैं तब लगता है कि अब तो शक्ति जवाब दे रही है, क्या करें। फिर सोचते हैं कि मैं अपनी और शक्ति क्यों ना लगाऊं, 2 कर लूंगा तो क्या हो जाएगा। और फिर वो और शक्ति लगा करके 10 उपवास कर लेता है। और कभी कभी 11 दिन का पड़ता है तिथि वृद्धि के कारण, तो फिर 11 कर लेता है। तो इसी प्रकार अपन नमोकार को अपनी विशुद्धि बढ़ाकर और भक्ति के साथ और परिचय के साथ, परमेश्वरियों का और परिचय प्राप्त करके और अधिक ध्यान लगाकर करें। अपनी भूमिका जितनी भी होगी उस भूमिका में अपन आगे तो बढ़ सकते हैं ना। अपने पास जितनी सीमा है उस सीमा में अपन उत्कृष्ट क्यों ना करें। जैनम जयतु शासनम। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन गृहे जिन राजमहं यजे जिन गृहे जिन शास्त्रमहं यजे जिन गृहे मुनिराजमहं यजे। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः असि आवसा देव शास्त्र गुरुभ्यो नर्घ्य पद प्राप्तिर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। कायोत्सर्ग। केवल ज्ञान होने के बाद जब आयु पूर्ण होती है तो उसको पंडित पंडित मरण कहते हैं।